का था, रूप वही रूप नया।
नमस्कार, मेरा नाम है नूरवी मेहरा और आप मुझे सुन रहे हैं गाथा पर। मन तो साहित्य जगत के सबसे जाने माने साहित्यकारों में से एक है और बिरले ही ऐसा कोई पाठक होगा जिसने उनके बारे में न सुना हो। मंटो की कहानियाँ जब लिखी गई थी तब उन्हें ओछा ठहराया गया था, उन्हें बहुत भला बुरा कहा गया था, उनके साहित्य को नाकाबिले बर्दाश्त कहा गया था, सिर्फ इसलिए कि मंटो ने कभी भी अपनी कहानियों पर एक फिल्टर नहीं लगाया। उन्होंने समाज को जैसा देखा वैसा लिखा और वो खुद कहते थे कि मैं ये जो कहानियाँ गढ़ रहा हूँ ये मैं समाज को एक आईना दिखा रहा हूँ, तो अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद नहीं हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपको ये समाज नहीं पसंद। अगर आपको मेरी कहानियाँ नाकाबिले बर्दाश्त लगती हैं तो इसके माने ये हैं कि ये समाज नाकाबिले बर्दाश्त है। बहुत साहसी और मंटो एक बहुत साहसी और बेपरवाह लेखक थे। उन्होंने सच को वैसा लिखा जैसा सच होता है, कड़वा। पेश है उनके द्वारा लिखी गई ऐसी ही एक कड़वी कहानी, खोल दो।
सादत हसन मंटो उर्दू के सबसे बड़े कहानीकार हुए हैं। साहित्य जगत में शायद ही ऐसा कोई पाठक हो जो उनके नाम से अपरिचित हो। मंटो ने समाज की गंदगी और घिनौनेपन को अनुभव किया और जिंदगी के जहर को इस प्रकार चखा कि वह उनकी कहानियों तक से झलकने लगा। समाज को भले ये कहानियां नाकाबिले बर्दाश्त लगी हों, मगर असल में ये कहानियां उसी समाज का एक आईना है। पेश है उनके द्वारा लिखी गई ऐसी ही कहानी, खोल दो। अमृतसर से स्पेशल ट्रेन दोपहर 2 बजे को चली और 8 घंटों बाद मुगलपुरा पहुंची। रास्ते में कई आदमी मारे गए, मुतद्दीद जख्मी हुए और कुछ इधर उधर भटक गए। सुबह 10 बजे कैंप की ठंडी जमीन पर जब सिराजुद्दीन ने आंखें खोली और अपने चारों तरफ मर्दों औरतों और बच्चों का एक मुतलातम समुंदर देखा तो उसकी सोचने समझने की कुव्वतें और भी ज़ईफ हो गईं। वो देर तक गदले आसमान को टकटकी बांधे देखता रहा। यूं तो कैंप में हर तरफ शोर बरपा था लेकिन बूढ़े सिराजुद्दीन के कान जैसे बंद थे, उसे कुछ सुनाई नहीं देता था। कोई उसे देखता तो ये ख्याल करता कि वो किसी गहरी फिक्र में गर्क है, मगर ऐसा नहीं था। उसके होशो हवास शल थे, उसका सारा वजूद खला में मुअल्लक था। गदले आसमान की तरफ बगैर किसी इरादे के देखते देखते सिराजुद्दीन की निगाहें सूरज से टकराई। तेज रोशनी उसके वजूद के रगो रेशे में उतर गई और वो जाग उठा। ऊपर तले उसके दिमाग पर कई तस्वीरें दौड़ गईं, लूट, आग, भागम भाग, स्टेशन, गोलियां, रात और सकीना। सिराजुद्दीन एकदम उठ खड़ा हुआ और पागलों की तरह उसने अपने चारों तरफ फैले हुए इंसानों के समुंदर को खंगालना शुरू किया। पूरे 3 घंटे वो सकीना सकीना पुकारता कैंप में खाक छानता रहा, मगर उसे अपनी जवान इकलौती बेटी का कोई पता न मिला। चारों तरफ एक धांधली सी मची थी, कोई अपना बच्चा ढूंढ रहा था, कोई माँ, कोई बीवी और कोई बेटी। सिराजुद्दीन थक हार कर एक तरफ बैठ गया और हाफिजे पर जोर देकर सोचने लगा कि सकीना उससे कब और कहाँ जुदा हुई। लेकिन सोचते सोचते उसका दिमाग सकीना की माँ की लाश पर जम जाता जिसकी सारी अंतड़ियां बाहर निकली हुई थी। इससे आगे वो और कुछ न सोच सकता। सकीना की मां मर चुकी थी, उसने सिराजुद्दीन की आंखों के सामने दम तोड़ा था, लेकिन सकीना कहाँ थी जिसके मुतल्लिक उसकी मां ने मरते हुए कहा था, मुझे छोड़ो और सकीना को लेकर जल्दी यहां से भाग जाओ। सकीना उसके साथ ही थी, दोनों नंगे पांव भाग रहे थे। सकीना का दुपट्टा गिर पड़ा था, उसे उठाने के लिए उसने रुकना चाहा था, मगर सकीना ने चिल्लाकर कहा था, अब्बा जी छोड़िए, लेकिन उसने दुपट्टा उठा लिया था। इस सोचते सोचते उसने अपने कोट की उभरी हुई जेब की तरफ देखा और उसमें हाथ डालकर एक कपड़ा निकाला। सकीना का वही दुपट्टा था, लेकिन सकीना कहाँ थी? सिराजुद्दीन ने अपने थके हुए दिमाग पर बहुत जोर दिया, मगर वो किसी नतीजे पर न पहुंच सका। क्या वो सकीना को अपने साथ स्टेशन तक ले आया था? क्या वो उसके साथ ही गाड़ी में सवार थी? रास्ते पर जब गाड़ी रोकी गई थी और बलवाई अंदर घुस आए थे, तो क्या वो बेहोश हो गया था जो वो सकीना को उठा कर ले गए? सिराजुद्दीन के दिमाग में सवाल ही सवाल थे, जवाब कोई भी नहीं था। उसको हमदर्दी की जरूरत थी, लेकिन चारों तरफ जितने भी इंसान फैले हुए थे, सबको हमदर्दी की जरूरत थी। सिराजुद्दीन ने रोना चाहा, मगर आंखों ने उसकी मदद न की। आंसू जाने कहां गायब हो गए थे। 6 रोज बाद जब होशो हवास किसी कदर दुरुस्त हुए, तो सिराजुद्दीन उन लोगों से मिला जो उसकी मदद करने के लिए तैयार थे। 8 नौजवान थे जिनके पास लारी थी, बंदूकें थी। सिराजुद्दीन ने उनको लाख लाख दुआएं दी और सकीना का हुलिया बतलाया। गोरा रंग है और बहुत ही खूबसूरत है, मुझ पर नहीं अपनी माँ पर थी। उम्र 17 बरस के करीब है, आंखें बड़ी बड़ी, बाल स्याह, दाहिने गाल पर मोटा सा तिल है। मेरी इकलौती लड़की है, ढूंढ लाओ, तुम्हारा खुदा भला करेगा। रजाकार नौजवानों ने बड़े जज्बे के साथ बूढ़े सिराजुद्दीन को यकीन दिलाया कि अगर उसकी बेटी जिंदा हुई तो चंद ही दिनों में उसके पास होगी। 8ों नौजवान ने कोशिश की, जान हथेलियों पर रख कर वो अमृतसर गए। कई औरतों, कई मर्दों और कई बच्चों को निकाल निकाल कर उन्होंने महफूज मुकामों पर पहुंचाया। 10 रोज गुजर गए, मगर उन्हें सकीना कहीं न मिली। एक रोज वो उसी खिदमत के लिए लारी पर अमृतसर जा रहे थे कि 6 हट्टा के पास सड़क पर उन्हें एक लड़की दिखाई दी। लारी की आवाज सुनकर वह बिद की और भागना शुरू कर दिया। रजाकारों ने मोटर रोकी और सब के सब उसके पीछे भागे। एक खेत में उन्होंने लड़की को पकड़ लिया, देखा तो बहुत खूबसूरत थी। दाहिने गाल पर मोटा दिल था। एक लड़के ने उससे कहा, घबराओ नहीं, तुम्हारा नाम सकीना है। लड़की का रंग और भी जर्द हो गया, उसने कोई जवाब न दिया। लेकिन जब तमाम लड़कों ने उसे दम दिलासा दिया, तो उसकी वहशत दूर हुई और उसने मान लिया कि वो सिराजुद्दीन की बेटी सकीना है। 8 रजाकार नौजवानों ने हर तरह सकीना की दिलजोई की, उसे खाना खिलाया, दूध पिलाया और लारी में बिठा दिया। एक ने अपना कोट उतार कर उसे दे दिया, क्योंकि दुपट्टा न होने के बायस वो बहुत उलझन महसूस कर रही थी और बार बार बाहों को अपने सीने को ढांकने की नाकाम कोशिश में मसरूफ थी। कई दिन गुजर गए, सिराजुद्दीन को सकीना की कोई खबर न मिली। वो दिन भर मुख्तलिफ कैंपों और दफ्तरों के चक्कर काटता रहता, लेकिन कहीं से भी उसकी बेटी का पता न चला। रात को वो बहुत देर तक उन रजाकार नौजवानों की कामयाबी के लिए दुआएं मांगता रहा जिन्होंने उसको यकीन दिलाया था अगर सकीना जिंदा हुई तो चंद दिनों ही में वो उसे ढूंढ निकालेंगे। एक रोज सिराजुद्दीन ने कैंप में उन नौजवान रजाकारों को देखा, लारी में बैठे थे। सिराजुद्दीन भागा भागा उनके पास गया। लारी चलने ही वाली थी कि उसने पूछा, बेटा मेरी सकीना का पता चला? सबने यक जबान होकर कहा,
चल जाएगा चल जाएगा,
और लारी चला दी। सिराजुद्दीन ने एक बार फिर उन नौजवानों की कामयाबी के लिए दुआ मांगी और उसका जी किसी कदर हल्का हो गया। शाम के करीब कैंप में जहां सिराजुद्दीन बैठा था उसके पास ही कुछ गड़बड़ सी हुई। चार आदमी कुछ उठा कर ला रहे थे। उसने दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि एक लड़की रेलवे लाइन के पास बेहोश पड़ी थी। लोग उसे उठा कर लाए हैं। सिराजुद्दीन उनके पीछे पीछे हो लिया। लोगों ने लड़की को अस्पताल वालों के सुपुर्द किया और चले गए। कुछ देर वो ऐसे ही अस्पताल के बाहर गड़े हुए लकड़ी के खंभे के साथ लगकर खड़ा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदर चला गया। कमरे में कोई भी नहीं था। एक स्ट्रेचर था जिस पर एक लाश पड़ी थी। सिराजुद्दीन छोटे छोटे कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ा। कमरे में दफतन रोशनी हुई। सिराजुद्दीन ने लाश के जर्द चेहरे पर चमकता हुआ तिल देखा और चिल्लाया, सकीना! डॉक्टर ने जिसने कमरे में रोशनी की थी सिराजुद्दीन से पूछा, क्या है? सिराजुद्दीन के हलक से सिर्फ इस कदर निकल सका, जी मैं इसका बाप हूं। डॉक्टर ने स्ट्रेचर पर पड़ी हुई लाश की तरफ देखा, उसकी नब्ज टटोली और सिराजुद्दीन से कहा, खिड़की खोल दो। सकीना के मुर्दा जिस्म में जुम्बिश पैदा हुई। बेजान हाथों से उसने इजार बंद खोला और शलवार नीचे सरका दी। बूढ़ा सिराजुद्दीन खुशी से चिल्लाया, जिंदा है, मेरी बेटी जिंदा है। डॉक्टर सर से पैर तक पसीने में गर्क हो गया।
ये थी मंटू द्वारा लिखी गई कहानी खोल दो। अगर आप मेरी आवाज़ में और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए गाथा ऐप, जिसमें आप अमृता प्रीतम की लिखी गई कहानियाँ मेरी आवाज़ में सुन सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही अगर कोई ऐसी कहानी है जो आप चाहते हैं कि इस चैनल पर आए तो कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे हाई।
आप सुन रहे थे मंटो द्वारा लिखी गई कहानी खोल दो, मेरी यानी अनूरवी मेहरा की आवाज़ में। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए जुड़े रहिए गाथा से।